सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मैं हूं फरहत नाज। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। मीर के कही शेर में बेहद जरूरी संदेश है कि एक बार उम्र बीतने के बाद फिर सफर करना आसान नहीं रह जाता। एक ही जिंदगी है, इसीलिए खूब यात्राएं करें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष का अंत ना तो अंत है ना ही शुरुआत, बल्कि ये ज्ञान की अनवरत प्रक्रिया है जो अनुभव से पैदा होती है। जीवन का हर क्षण आपको विलक्षण सीख दे सकता है, बशर्ते आप तैयार हो। तो आइए इसी सकारात्मक विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हैप्पी न्यू ईयर टू यू फरहत, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस दिस न्यू ईयर्स डे मॉर्निंग। अ न्यू बिगिनिंग, एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ओवर, मेक रेजोल्यूशंस एंड ट्राई टू कीप देम। And of course, in life, Farhad, there are good times, there are bad times. You know, we must learn to strike a balance between the two. So, take the bitter with the sweet and enjoy life and don't ever look back.
जी बिल्कुल सुभद्रा, बहुत से लोगों ने हमें जो है वो अलविदा कहा और बहुत सारी जो चीजें थी वो हम लोगों ने पीछे छोड़ दी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो साल होगा वो बेहद खूबसूरत होगा।
Yes, yes, friends, I'll leave all your cares aside and begin afresh a brand new year. Lots of happiness and cheers, listeners. On that note, begin this edition of our news magazine show, Aaj Saveri.
जी बिल्कुल सुभद्रा, और देश और दुनिया ने भी जो है कल नववर्ष का स्वागत किया। विश्व के विभिन्न शहरों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नववर्ष का उत्साह देखा गया। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर नए साल की शुरुआत करने वाले दुनिया के पहले प्रमुख शहरों में से एक है, क्योंकि हजारों लोगों ने प्रतिष्ठित स्काई टॉवर पर शानदार आतिशबाजी करी और उसका आनंद लिया। आतिशबाजी ने रात के आसमान को रोशन किया, क्योंकि जश्न में हिस्सा लेने के लिए शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भारी भीड़ जमा हुई। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि नववर्ष सभी के जीवन में नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं की शुभारंभ का प्रतीक है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोगों से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखते हुए मजबूती से आगे बढ़ने को कहा।
Prime Minister Narendra Modi has remarked that the country is a powerhouse of talent, filled with innumerable inspiring life journeys showcasing innovation and courage. In a social media post yesterday, Mr. Modi cited an example of the Green Army and hailed their pioneering work and as inspiration. The Green Army is a group of determined women in Devra in Varanasi who raise awareness against drugs and gambling, celebrate the birth of every girl child like a festival and fights like against Dowry. The group's journey began with the establishment of a slipper-making factory with the first pair of the slippers sent to the Prime Minister. Later, the group received a letter of appreciation from the Prime Minister where he expressed pride over the group.
इस वर्ष भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधायी सुधार किए गए। ये नए कानून बनाए गए। इन सुधारों का उद्देश्य पोत निर्माण, बैंकिंग, रेलवे, विमानन और अन्य क्षेत्रों को मजबूत करना था। वर्ष 2024 में शताब्दी पुराने कानूनों के स्थान पर कई नए विधेयक लाए गए या अधिनियमित किए गए। इनमें शामिल है नए भारतीय आपराधिक कानून, 1934 के विमान अधिनियम के स्थान पर विधेयक और शताब्दी पुराना समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 के स्थान पर।
The total annual groundwater recharge in the country has increased by 15 billion cubic meters substantially, and extraction has declined by 3 billion cubic meters in 2024. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil yesterday released the Dynamic Groundwater Resource Assessment Report for the year 2024. According to reports, the total annual groundwater recharge has been assessed as over 446 billion cubic meters. The annual groundwater extraction for all users is over 245 billion cubic meter.
वहीं सुभद्रा, भारत के उत्पादन क्षेत्र में भी काफी वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस साल नवंबर में देश के प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में भी नवम्बर 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
The central government has launched several policies and programs aimed at fostering innovation, skill development, entrepreneurship and technological growth to empower the country's youth. The last 10 years, the Narendra Modi government has propelled a new wave of opportunities for India's youth. Our correspondent report that in the first 100 days of the third term of the Modi government, appointment letters have been issued to over 15,000 youth for government jobs. Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa has signed a new law ending the death penalty in the country. The move follows a recent vote in Parliament to scrap capital punishment. Although Zimbabwe hasn't executed anyone since 2005, courts continue to issue death sentences for serious crimes like murder. Zimbabwe's Minister of Justice, Mr. Ziambi, called the change a sign of Zimbabwe's commitment to justice and humanity.
भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण का 18वां संस्करण कल लुम्बिनी के रूपंदेही में शुरू हुआ। इस बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांति मिशन की स्थापना, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य, आंतरिक क्षमता निर्माण और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। दो सप्ताह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में नेपाल की सेना की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल शामिल होंगी। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे।
Akashwani News brings you glimpses of 2024. Today, we take a look at the key initiatives and achievements of the Ministry of New and Renewable Energy. The government continued its remarkable journey toward transforming India's energy landscape in 2024. This progress is in line with India's commitment to achieving its 500 gigawatt of non-fossil fuel energy in line with the Panchamrit goals set by Prime Minister Narendra Modi. More from our correspondent.
India crossed the 200 gigawatt milestone of total installed renewable energy capacity in September 2024, marking a 14% increase compared to the previous year. In February 2024, the government launched the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana to install rooftop solar panels in 1 crore households. India's cumulative installed solar energy capacity has reached over 94 gigawatt. The National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 600 crore rupees, was also launched to reduce fossil fuel imports by 1 lakh crore and cut carbon emissions by 5 million metric tons by 2030. This mission aims to position India as a global hub for green hydrogen production and export, creating over 6 lakh jobs and attracting investments worth 8 lakh crore rupees by 2030. Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
और श्रोताओं, अब रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले क्या है आपके पास सुभद्रा? चेन्नई में
चेन्नई द मेट डिपार्टमेंट हैड रिपोर्टेड दैट चेन्नई सिटी रिकॉर्डेड 108 cm रेनफॉल दिस ईयर, क्रॉसिंग 100 cm फॉर द फिफ्थ टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। एड्रेसिंग द प्रेस पर्सन इन चेन्नई, डॉक्टर एस बालचंद्रन, हेड ऑफ रीजनल मेट चेन्नई, सेड तमिलनाडु रिसीव 118 cm टोटल रेनफॉल दिस ईयर, 14 cm मोर देन द लास्ट ईयर. All districts except Tuticorin and Nilgiris received excess rainfall this year, he added. Chennai police have seized over 17 kilograms of methamphetamine drug at Chennai and held 10 people connected with supplying the drug. The Anti-Narcotics Intelligence Unit of the Greater Chennai Police initially confiscated 1.5 kg by arresting two persons in Red Hills area in suburban Chennai. Acting on the information from the arrested, the team seized 15.5 kg more from the same area, arrested 10 more.
वहीं शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर से। दिल्ली नगर निगम डीडीए के 297 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय स्थित सिविक सेंटर सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय से 6 और अस्पताल प्रशासन से 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के उपायुक्तों ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ सुखमय जीवन की कामना करते हुए पौधे भेंट किए गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल करोलबाग के गुरुद्वारा संत सुजान सिंह महाराज से ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली सरकार इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रूपये की सम्मान राशि दिल्ली के हर ग्रंथी पुजारी को देगी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के मंदिर पुजारी भली भांति जानते हैं कि भाजपा ही उनकी अपनी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा पुजारियों के दुख सुख में शामिल रही है।
Bengaluru News now. As Bengaluru bid farewell to 2024, the city came alive with vibrant energy and celebration. Streets transformed into bustling hubs of festivity as revelers from all walks of life gathered to welcome 2025 in style. Crowds thronged popular spots like MG Road, causing extensive queues and overcrowding, while thousands more celebrated in neighbourhoods like Koramangala, Indira Nagar, Whitefield and Kalyan Nagar. Festivities carried on enthusiastically well past 1 a.m. At midnight, jubilant cheers of Happy New Year echoed across the city as people embraced the spirit of celebration with warm hugs and enthusiastic high fives, marking a joyous start to 2025.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रगतिशील गतिशील महाराष्ट्र के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के मजदूर और किसान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने आगे कामना की कि नया साल महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशी, समृद्धि और संतुष्टि लेकर आएगा। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर बृहन्मुंबई नगर निगम ने अगले आदेश तक खाई खोदने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन के रिसाव से संबंधित कार्य को छोड़कर खाई खोदने के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, इसलिए बीएमसी ने क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय लागू किए हैं।
Getting to Hyderabad now, the Anti-Corruption Bureau, ACB of Telangana State, registered a total of 152 cases, in which 223 accused were arrested in the year 2024. The department also obtained 105 sanctions for prosecution orders from the government and filed a charge sheet. An official release stated that the ACB achieved a conviction rate of 64% during the year. It also said that out of these 152 cases, 129 were trap cases involving the arrest of 200 accused, 11 were disproportionate assets cases against government servants, and 12 other cases of criminal misconduct by government servants in which 18 accused were arrested. Moving on, friends, to the world of sports. I beg your pardon, we are going back to Farhat. She has something to say to us, sorry.
जी सुभद्रा, पश्चिम बंगाल की हम जो है बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी नववर्ष का स्वागत सकारात्मक के साथ किया। हर जगह आम लोग बड़ी संख्या में और समूहों में इकट्ठा हो रहे हैं। शहर के पर्यटन स्थलों पर भी नववर्ष पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसके लिए विक्टोरिया अलीपुर चिड़ियाघर, इंडियन म्यूजियम, बिरला प्लेनेटोरियम के साथ कालीघाट और दक्षिणेश्वर में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है और इन जगहों पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन अब
Yes, now of course we are going to the world of sports. West Bengal clinched Santosh Trophy, defeating Kerala 1-0 in the final at Gachibowli Stadium. We have a report.
In football, West Bengal claimed their 33rd Santosh Trophy title, ending the 7-year drought with a thrilling 1-0 victory over Kerala at Gachibowli Stadium yesterday. Robbie Hansda scored the decisive goal in the 90th plus 4th minute, capitalizing on a header from Mantos Maji. Hansda's stellar performance earned him the player of the match and the player of the tournament honors. Moving on to the world of hockey, the Hyderabad Tufans edged out the Delhi SG Pipers 5-4 in a nail-biting shootout after a 2-2 draw in the Hockey India League at Rourkela. Amadeep Lakhra and Gonzalo Pialit scored early for Hyderabad, while Dilraj Singh and Gareth Furlong brought Delhi back. The shootout saw Hyderabad hold their nose to secure a bonus point. And tonight, Srachi Rar Bengal Tigers will take on the team Gunaseka in Rourkela this evening. This match is scheduled to begin at 8:15 p.m. With reports from Ayur Jain, this is Anmol Solomon Sani, Akashwani News, Delhi.
और श्रोताओं, अब रुक कर लेते हैं मौसम का। तो सुभद्रा, क्या है मौसम चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में?
यस फरहत, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मिस्ट इन द मॉर्निंग। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई विल बी सीन लेटर ऑन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
वहीं अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो साल के आखिरी दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड महसूस की गई और राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल जो है वो धूप खिलने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन मुंबई की अगर बात की जाए और कोलकाता की बात की जाए, तो वहां पर आसमान साफ रहेगा। फिलहाल बारिश का कोई असर अभी नहीं जारी किया गया है। और अब आगे बढ़ लेते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। देश और दुनिया में एक जनवरी का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। और बात की जाए 1972 की, तो आज ही के दिन बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था।
And Farhad, I'm really going back in time. I'm going to 46 BC, okay? 46 BC, Julius Caesar introduced the Julian calendar while establishing January 1st as the start of the new year. This change honored Janus, who is the Roman god of beginnings, following whom the month of January is named. In spite of this reform, the acceptance of January 1 as New Year's Day was not at all immediate or universal. Much later in Gregory the 13th, who was the Pope from 1572 to 1575, set the Gregorian calendar that came into force in 1582.
और बात की जाए अगर सुभद्रा 1971 की, तो आज ही के दिन टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया था। वहीं 1880 में आज ही के दिन भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
1502, Portuguese explorer landed at Guanabara Bay on the coast of South America, named it Rio de Janeiro, that is River of January. Rio de Janeiro is currently Brazil's second largest city, and 1664 this day, Shivaji assumed royal title after his crowning. Shivaji assumed the title of Chhatrapati. The royal title Chhatrapati was used in the Indian subcontinent only. Chhatra means umbrella and Pati means leader, lord. And 1801, Ireland was added to Great Britain by an act of union, thus creating the United Kingdom of Great Britain and Ireland. And 1818 this day, English author Mary Shelley's classic Gothic horror novel Frankenstein was published. And 1858, publication of Marathi newspaper Gyanoday.
वहीं 1862 में आज के दिन भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन भी आज के दिन अस्तित्व में आया। और 1971 में टेलीविजन पर, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कि सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया था।
एंड 1874 द फर्स्ट विमेन्स मैगजीन बोला बोधिनी वॉज पब्लिश्ड। 1892 Ellis Island in New York Harbor opened. Over 20 million new arrivals to America were processed until its closing in 1954. On this day in 2002, the euro, the monetary unit of the European Union, was introduced with the issuance of both currency and coins. And by March 2002, it was the sole legal tender of participating member states. And 1901, the Commonwealth of Australia was founded as six former British colonies became six states with Edmund Barton as the first Prime Minister. 1915, this day, Mahatma Gandhi was awarded the Kesari Hind by the Viceroy for his work in South Africa. And in 1966, Simon and Garfunkel reunite after a reworked version of their song, The Sound of Silence, that hit the number one US charts. 1972, Coordinated Universal Time, also called UTC, was adopted worldwide. UTC, of course, is determined from six primary atomic clocks that are coordinated by the International Bureau of Weights and Measures, located in France. And in 1985, Doordarshan starts Malayalam telecast from Trivandrum. And 1988, on New Year's Day, Maharashtra became the first state to launch a public campaign against smoking.
और साल के पहले दिन अब याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिनका जन्म हुआ था, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ और बेहतरीन साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद को। संपूर्णानंद गंभीर विचारक और प्रौढ़ लेखक थे। इनकी रचनाओं में इनके व्यक्तित्व और पांडित्य की स्पष्ट छाप थी। इन्होंने उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया। डॉक्टर संपूर्णानंद स्वभाव से गंभीर थे। उन्होंने गंभीर विषयों पर ही लेखनी चलाई। उनकी भाषा भी गंभीर, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। भाषा में प्रभाव और वो विषय के अनुसार परिवर्तनशील भी रहे। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग इन्होंने बहुत कम किया। कहीं कहीं भावव्यक्ति में धर्म संकट में पड़ना जैसे सामान्य मुहावरों का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है।
1894 this day, and this is a very interesting bit of information, friends. As broadcasters, even before we begin a radio show, Farhad, we announce the frequencies, right? And they are called radio waves, mm-hmm. and they're usually measured in kilohertz or megahertz. And today we remember the man who made this happen, Heinrich Hertz, German physicist, who first proved the existence of electromagnetic waves, and the unit of frequency was named after him. Hailing from Hamburg, Germany, Heinrich Hertz received his PhD in the year 1880, and then he began his studies at Maxwell's studies of Maxwell's electromagnetic theory. While teaching at physics at Polytechnic College, he produced electromagnetic waves in the laboratory and measured their length and velocity. And these waves were called Hertzian, and later they called it radio waves. So now broadcasters say this every time they are opening a radio program, even before they greet the listeners. So today marks the death anniversary of this gentleman, Hertz, who is also called the father of frequencies. And Farhad, from a German physicist to our own physicist, and also a mathematician, Satyendranath Bose, a genius who had collaborated with Albert Einstein in developing a theory regarding the gas-like qualities of electromagnetic radiation. Born on January 1, 1894 in Kolkata, Bose was a multifaceted genius who worked in diverse fields like chemistry, biology, soil science, mineralogy, philosophy, fine arts, archaeology, literature and languages. And Farhad, one big feather in his cap was his collaboration with the great Albert Einstein, wherein the pair predicted the existence of new phenomenon dubbed Bose-Einstein condensation. Condensation. Bose strongly felt that it was duty to present science to the common man in his own language. So popularizing science, Bose wrote in Bengali. Called the father of the God particle, Bose was conferred with the Padma Vibhushan Award in 1954. Rabindranath Tagore dedicated his only book on science, Vishwa Parichay, to Satyendranath Bose.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महादेव हरिभाई देसाई का. वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विश्वसनीय सचिव थे. महादेव देसाई ने चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इसी दौरान वे गिरफ्तार भी हुए. महादेव भाई का सबसे बड़ा योगदान है महादेव भाई की डायरी. 8 खंडों में प्रकाशित इस डायरी में इन्होंने गांधी जी के नित्य प्रति के क्रियाकलापों का आधिकारिक वर्णन प्रस्तुत किया. इसका प्रकाशन महादेव भाई की मृत्यु के बाद हुआ. महादेव देसाई के बारे में गांधी जी का कहना था कि जितना काम अकेले महादेव कर लेते हैं आधे दर्जन सचिव होते तब भी उतना काम नहीं कर सकते थे. तो वो बहुत मानते थे महादेव हरिभाई देसाई को. एक तरीके से यूं कह लीजिए राइट हैंड जो है वो थे वो.
And friends, our tributes to Sir Edwin Lutyens, a renowned British architect, celebrated for his masterful blend of function and artistry. Lutyens studied architecture at South Kensington School of Art, London, from 1885 to 1887. After college, he joined the Ernest George and Harold Pitou architectural practice. His prolific career spanned an array of country houses, commercial buildings, monuments all over England and Europe. And friends, his crowning achievement, Rashtrapati Bhavan, followed by Parliament House and several government offices and India Gate in New Delhi. Called Lutyens Delhi, his influence deeply resonates throughout New Delhi, one of the most successful planned cities of the 20th century. And of course, Lutyens passed away from cancer on this day in 1944, leaving behind a legacy as one of the great architects and craftsmen of his time.
वहीं अब बात करते हैं एक ऐसे शायर की जिनकी शायरी का हर एक युवा कायल था. रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है. एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है चल पड़ता है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहत इंदौरी की. डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के एक ऐसे वट वृक्ष थे जिसकी छाया में कई नवंकुर शायर और कवि बैठे, जिन्होंने इस वृक्ष की छाया महसूस की. लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था. कहते हैं शायरी और गजल इशारे का आर्ट है. राहत इंदौरी इस कला के फनकार थे. वे कहते थे कि मेरा शहर अगर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं तो मैं अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं. और कोरोना महामारी के समय इस वृक्ष की छांव को अदब से छीन लिया गया. और उनका एक और बहुत ही खूबसूरत सा शेर है सुभद्रा जो मुझे याद आ रहा है कि आसमां ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, अपनी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं. हमसे पहले भी मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते जाते.
ब्यूटिफुल. एंड आफ्टर दैट ब्यूटिफुल पोएट्री, वी रिमेम्बर हैंक विलियम्स. टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी हैंक विलियम्स, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, हु इन द 1950s आर्ग्युबली बिकेम अ country music's first superstar. Williams began playing the guitar at age 8. He made his radio debut at age 13, formed his first band, Hank Williams and his Drifting Cowboys, at age 14. And early on began wearing the cowboy hats and Western clothing. That became a part of him. Soon, you know, the entire country and Western artists followed suit. Now one will not see a country musician without his cowboy hat and boots. An immensely talented songwriter and an impassioned vocalist, he also experienced great crossover success in the popular music market. In 2010, the Pulitzer Prize Board awarded Williams a special citation for his craftsmanship as a songwriter who expressed universal feelings with poignant simplicity and played a pivotal role in transforming country music into a major musical and cultural force in American life. Very sadly, he died young at 29 years of age this day, way back in 1953.
और आज के दिन जन्म हुआ था बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक अद्वैत मल्लबन का. इनके द्वारा रचित बांग्ला उपन्यास तितास एकटी नदर नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ. अपनी जीविका के लिए इन्होंने कई जगहों पर काम किया, जैसे 1934-35 में त्रिपुरा हित साधनी सभा के मुखपत्र में उन्होंने पत्रिका लिखी. 1935 में प्रेमेंद्र मित्र के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नव शक्ति से भी उनका जुड़ाव रहा. 1938 की बात की जाए तो श्री सागरमय घोष उनके सहायक बनकर आए और उन्हें 35 रूपये वेतन पर संपादक का पद मिला, लेकिन इनके मन में तो तितास बसी थी. तितास किनारे के जीवन की अनेक छवियां उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होने लगी. इनकी आरंभिक रचनाएं नव शक्ति में छपी, पर 1941 में ये पत्रिका भी बंद हो गई थी.
1864, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड स्टीग्लिट्ज, अमेरिकन फोटोग्राफर हु प्लेड अ पायनियर रोल इन मेकिंग फोटोग्राफी एन एक्सेप्टेड आर्ट फॉर्म एंड इज नाउ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फोटोग्राफी. इन 1902, स्टीग्लिट्ज फाउंडेड फोटो सेसेशन, अ रेडिकल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल मूवमेंट दैट वॉज इन्फ्लुएंशियल इन प्रमोटिंग फोटोग्राफी एज अ फाइन आर्ट. फॉर दिस ग्रुप, फोटोग्राफी वॉज व्यूड नॉट जस्ट एज अ डॉक्यूमेंटिंग टूल बट एज अ न्यू वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएशन, वे बाय एन इमेज कुड बी मैनिपुलेटेड टू अचीव अ सब्जेक्टिव विजन. And 1879 this day, birth anniversary of E.M. Forster, British novelist, well known for his books A Passage to India and Howards End. Of course, Forster began writing A Passage to India in 1913, just after his first visit to India. The novel was not just revised and completed, however, until well after World War I, and his second stay in India in 1921, when he served as a private secretary to the Maharaja of Dewas State Senior. And of course, he's famous for his other novels, and Room with a View, written in 1908, and Howards End, 1910.
और सुभद्रा, आज दो भारतीय अभिनेताओं का जन्मदिन है जो अपने बोलने के अंदाज की वजह से जाने गए. पहले विश्वनाथ नाना पाटेकर और दूसरे असरानी. भारतीय फिल्म अभिनेता के साथ साथ नाना पाटेकर ने लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में भी कार्य किया. नाना पाटेकर कई संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा भी कर रहे हैं. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक की श्रेणी में फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाले वो एकमात्र अभिनेता रहे. उनके अभिनय के सभी कायल रहे और यही कारण है कि उन्हें आज भी कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. और अब बात दूसरे कलाकार असरानी की हम कर रहे हैं, तो उनका असली जो पहचान थी अपने समय की सुपरहिट फिल्म शोले में निभाए गए उस पुलिस अधिकारी के किरदार के रूप में मिली, जो खुद को अंग्रेजों के जमाने का जो है वो जेलर बताते थे और गौरव महसूस करते थे. लगभग सभी बड़े अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम कर चुके असरानी लंबे समय से आज भी दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में इसीलिए सफल है क्योंकि उन्होंने काम में अपना हमेशा एक नयापन दिखाया. वो जब भी किसी कैरेक्टर में आते थे तो एक अलग छाप छोड़ जाते थे. और बहुत ज्यादा फिल्में उन्होंने नहीं करी, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने करी वो यादगार बन गई.
Yes, good to have your birthday on January the 1st, right?
Jee.
New Year's Day. Okay, today is the birthday of country Joe McDonald, American rock singer and guitarist, lead singer of the 1960s psychedelic rock group Country Joe and the Fish. McDonald had recorded 33 albums, written hundreds of songs over a career spanning 40 years. Also, he has performed in all major venues in the United States, the Fillmore, the Monterey Pop Festival, and both the original and 1979 Reunion Woodstock Festivals. Today is also the birthday of American jazz saxophonist and composer Chris Potter. Tenor saxophonist Chris Potter remains one of the most impressive jazz musicians to have emerged in the last 30 years. Blessed with awe-inspiring instrumental technique, no doubt honed through solid training and practice sessions, he emerged as a young prodigy in the early 1990s. And today is also the birthday of Italian-American actor Frank Langella. A stage and screen actor of extreme versatility, Frank won acclaim on the New York stage in Seascape and followed it up with the title role in the Edward Gorey production of Dracula.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का. इनको गुरुदत्त की फिल्म आर पार और सीआईडी के लिए याद किया जाता है. शकीला ने इसके अलावा खूबसूरत, राजरानी दमयंती और चाइना टाउन, सलोनी और आगोश और अरमान में बतौर बाल कलाकार भी अभिनय किया. तो आज साल के पहले दिन हमने याद किया इन सारी हस्तियों को.
यस फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. Have a great day. Namaskar.
Namaskar.